प्रिय श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओं हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर इसराइल की मूर्ति पूजा के कारण उनसे रुष्ट था, अतः वह कहता है कि इसराइल का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा, वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे, क्योंकि उनका पाप बढ़ता ही जाता था। उनका वह बछड़ा जिसके लिए वे परस्पर स्पर्धा करते थे अश्शूर के राजा को भेंट किया जाएगा। इसराइल के पूजा स्थल नष्ट होंगे और इसराइल राजा समेत नष्ट किया जाएगा। मेरे प्रियो, हमने इन बातों को देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 पद से पढ़ेंगे। होशे 10 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, आवेन के ऊंचे स्थान जो इसराइल का पाप हैं, वे नष्ट होंगे। उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। आवेन के ऊंचे स्थान, जैसा हमने देखा है कि वे पहाड़ों पर वृक्ष कुंजों में पूजा करते थे। लिखा है, लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो और टीलों से कि तुम हम पर गिर पड़ो। वे दंड से बचने के लिए ऐसा करेंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 6 अध्याय उसके 15 से 17 पद में भी यही लिखा है कि महाक्लेश के समय लोग पहाड़ों और टीलों से यही कहेंगे। आइए हम पढ़ें होशे 10 अध्याय उसके 9 पद को। लिखा है, हे इसराइल, तू गीबा के दिनों से पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गीबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे। यह न्यायों की पुस्तक 19 और 20 अध्याय की भयानक घटनाओं का संदर्भ है। गीबा भयानक व्यभिचार का प्रतीक था। इसराइल की मूर्ति पूजा के साथ भोग विलास का पाप भी लिप्त था। होशे 10 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे हम पढ़ते हैं, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। एप्रेम सीखी हुई बछिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। एप्रेम सीखी हुई बछिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, अर्थात वे विपुल फसल और उपज से अति प्रसन्न थे, परंतु वे खेत जोतना नहीं चाहते थे। परमेश्वर कहता है कि वह उनसे खेत जोतने का काम ही करवाएगा। आगे लिखा है होशे 10 अध्याय उसके 12 पद में, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। यह संपूर्ण बाइबल का सिद्धांत है। यही बात पौलुस ने गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखी थी। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद में वह कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। होशे कहता है कि यदि उन्होंने धार्मिकता बोई है तो वे परमेश्वर की दया पाएंगे। यह सच है कि हम शैतान के अनुसार जीवन जिए या बिताएं और परमेश्वर से प्रतिफल की आशा रखें। होशे 10 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इसराइल ने दुष्टता बोई थी, अतः वे अपराध काटेंगे। वे झूठ पर निर्भर थे, उन्होंने झूठ बोलने वालों पर विश्वास किया, परमेश्वर पर नहीं, अतः उन्हें झूठ का फल मिलने वाला था। दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर कहता है कि वह छोटे से छोटे को सिंहासन पर बैठाता है। जी हाँ, यूनानी में एक कहावत है, देवताओं का पासा तैयार है। आप परमेश्वर से जीत नहीं सकते। आप सोचते होंगे कि झूठ बोलकर, चोरी करके, व्यभिचार करके आप बच जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जीवन का पासा फेंक कर आशा करते हैं कि वह आपके पक्ष में गिरे, परंतु परमेश्वर जानता है कि क्या होगा, क्योंकि उसे गिराने वाला परमेश्वर ही है। मेरे प्रियो, पाप का बीज बोकर आप पाप की फसल ही काटेंगे, अन्यथा परमेश्वर और बाइबल झूठे हैं। कोई यह न सोचे कि वह पाप करके बचेगा। आहाब और इजेबेल रानी और यहूदा को पुनर्जीवित करके पूछें तो वे कहेंगे, पाप करके कोई बच नहीं सकता, चाहे आप हो या मैं, कोई भी नहीं बच सकता। होशे 10 अध्याय उसके 14 पद में आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय सलमन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। यहां पर शब्द है सलमन, अर्थात अश्शूरों का राजा सलमनेसर। बेतरबेल संभवतः अरबेला, जो गलील के उत्तरी ग्रामीण क्षेत्र में था। यह युद्ध इतिहास में नहीं पहचाना जाता है। हम पढ़ते हैं, उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थीं। यह विधि अश्शूरों तथा बेबीलोन की थी। जी हां, इसराइलियों ने बेबीलोन में रो रो कर इसका उल्लेख किया था। भजन संहिता 137 उसके 8 और 9 में लिखा है, हे बेबीलोन, तू जो उजाड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही वर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। मेरे प्रियो, वे युद्ध में अत्यधिक असभ्य और पार्श्विक व्यवहार करते थे। क्या आपने आज की नई नैतिकता, नशा, शैतानी पूजा, समलैंगिक संबंधों के बारे में सुना है? क्या इन आधुनिक पापों की तुलना में बच्चों को चट्टानों पर पटकना अधिक बुरा था? होशे 10 अध्याय उसके 15 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इसराइल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। मेरे प्रियो, अश्शूरों ने एक ही रात में इसराइल को दास बनाकर अश्शूर भेज दिया। और इस प्रकार से इसराइली उसके बंदी हो गए। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 11 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अब तक तो परमेश्वर की अवज्ञा का वर्णन था, परंतु अध्याय 11 परमेश्वर के प्रेम से आरंभ होता है। तो आइए हम पढ़ें होशे 11 अध्याय उसके एक पद, लिखा है, जब इसराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मेरे प्रियो, यह पद निसंदेह इसराइल के लिए है। परमेश्वर और इसराइल में पिता पुत्र का सा एक घनिष्ठ संबंध था। परमेश्वर कहता है कि जब इसराइल बालक था, इसराइल राष्ट्र मेरा पुत्र था जिसे मैंने मिस्र से निकाला, इसलिए नहीं कि वे मेरी सेवा करते थे, वे तो वहां की मूर्ति पूजा करते थे, न ही वे योग्यता रखते थे और न ही बड़े लोग थे। मैंने उन्हें मिस्र से इसलिए निकाला कि मैं उनसे प्रेम करता था। मेरे प्रियो, प्रेम ही के कारण उसने हमें बचाया है। प्रेम उद्धार का आधार तो नहीं, परंतु उत्प्रेरक अवश्य है। मुक्ति के पीछे प्रभु यीशु की मृत्यु का कारण था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, जब इसराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया। प्रेम ही के कारण परमेश्वर ने इसराइल की सुधि ली, न कि इसराइल की योग्यता के कारण या भले कामों के कारण। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 15 पद में यह पद प्रभु यीशु के लिए काम में लिया गया है। यह पुराने नियम के भावी प्रसंग का एक उदाहरण है। बेतलेहम में जन्मा वह बालक इन लोगों के समान था। इसी कारण उस सामरी स्त्री ने कहा था कि यहूदी होकर वह एक सामरी स्त्री से पीने का पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदी सामरियों को तुच्छ समझते थे। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 9 पद को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, बचपन में प्रभु यीशु को सुरक्षा के लिए मिस्र ले जाया गया था और राजा हेरोदेश के मर जाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें इसराइल बुला लिया था। वहां उसने क्रूस पर जान देकर परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन किया और मनुष्य के लिए पाप क्षमा के निमित्त धार्मिकता उपलब्ध करवाई। उसने अपने लोगों से वरन मनुष्यों के साथ अपनी पहचान बनाई। उसने आपके और मेरे साथ अपनी पहचान बनाई। इसी कारण यूहन्ना लिखता है 3 अध्याय के 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम होशे 11 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश से कनानियों और अन्य आदिवासियों को या अन्य जातियों को निकाला, क्योंकि वे बाल देवता की पूजा करते थे। परंतु वहां आकर इसराइल भी बाल देवता और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगा और यही कारण था कि परमेश्वर उनसे दुखित था। होशे नबी के पुस्तक 11 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मैं ही एप्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए हुए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। परमेश्वर ने उन्हें विपुल आशीषें दी और उनका मार्गदर्शन भी किया, परंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। परमेश्वर कहता है कि मैंने उन्हें अपनी सेवा के लिए वाद्य नहीं किया था। परमेश्वर किसी को वाद्य नहीं करता है। जी हाँ, लोग कहते हैं परमेश्वर आज ऐसा क्यों नहीं करता है, वैसा क्यों नहीं करता है। परमेश्वर ने मुझे तो नहीं बताया कि क्यों नहीं करता है। मैं परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझता क्योंकि मैं एक अकिंचन प्राणी हूं। परंतु हाँ, यह अवश्य जानता हूं कि परमेश्वर आपको बाध्य नहीं करेगा। वह कहता है कि वह आप पर लगाम नहीं लगाएगा, परंतु वह आपसे प्रेम का बंधन तो अवश्य बांधेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी एक कर दिए कि आपके मन के द्वार पर आ जाए। वह दीनता पूर्वक खटखटाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। जी हां, वह भीतर घुसा चला नहीं आएगा। वह आपसे प्रेम की अभिव्यक्ति चाहता है। वह खटखटाता है। यदि आप द्वार खोलेंगे तो वह भीतर आएगा, यदि आप नहीं खोलेंगे तो वह किसी दूसरे द्वार पर चला जाएगा। नेपोलियन ने प्रेम के विषय में कहा था, चार्लमैन ने, सिकंदर महान आदि ने बल के आधार पर राज्य स्थापित किए थे, परंतु प्रभु यीशु के पास आज जान की आहुति देने वाले लाखों लोग हैं, क्योंकि उसने प्रेम के आधार पर राज्य स्थापित किया है। जी हाँ, परमेश्वर की यही एक विनती है। वह अन्य कोई विधि काम में नहीं लेगा। वह आपको प्रेम की अपेक्षा अन्य रीति से आकर्षित नहीं करेगा। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली विनती है। उसका बंधन प्रेम का है। जी हाँ, और वह चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें। होशे नबी की पुस्तक 11:5 में लिखा है, वह मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, अशुर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। इसराइल ने मिस्र से सहायता मांगी, परंतु देखा कि वह उनका बैरी है। तदुपरांत वह अशुरों के पास गया। परमेश्वर कहता है, मैं अशुर को ही उसका राजा बनाऊंगा। परमेश्वर ने उन्हें अशुरों के देश में ही दास बनाया, गुलाम बनाया, बंधुआ बना दिया। होशे 11:6-7 में इस प्रकार से लिखा है, तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नष्ट करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। यहां फिर से परमेश्वर हठीली कलोर की उपमा देता है। वह अपने अगले पैर कठोर करके विद्रोह करता है। परिणाम स्वरूप वह पीछे हटने लगता है। यही हठ है, जिद्दी है। आप परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते हैं, उसके पास आना नहीं चाहते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, जो कि असंभव है। होशे 11:8-9 में आगे लिखा है, हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इसराइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और ना फिर एप्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। मेरे प्रियो, यह प्रतिवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर द्विधा में है। वह हताश है, कहता है, हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परंतु पाप के कारण उन्हें दंड देगा। और तब वह कहता है, हे इसराइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के अतिरिक्त परमेश्वर के पास आपको बचाने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। आप सोचते होंगे कि अन्य मार्ग है, परंतु परमेश्वर के पास तो बस यही एक मार्ग है। होशे 13 अध्याय उसके 4 पद में वह कहता है, मेरे सिवाय तेरा उद्धार करता नहीं है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में यीशु के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, सिर्फ यीशु के द्वारा। उचित होगा कि हम उसकी सुने, क्योंकि हमारा काम उद्धार का नहीं है। उद्धार दिलाना परमेश्वर का काम है और वह चाहता है कि हम उसके पास आएं। आगे हम पढ़ते हैं, मैं कैसे तुझे आदमा के समान छोड़ दूं और सुबईम के समान कर दूं। इन दोनों नगरों को परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के साथ दंड दिया था। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे वैसा दंड नहीं देना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर को उन्हें दंड तो देना ही था। आज वह स्थान उन नगरों के समान उजाड़ पड़ा है। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर से दूर हुआ उन्होंने अपने जीवन में दंड को पाया। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उन्हें जो दंड दिया वह वास्तव में बहुत कम था। क्यों? क्योंकि वह कहता है, ना मैं फिर एप्रेम को नाश करूंगा। वह उन्हें मुक्ति दिलाकर फिर स्वदेश लाना चाहता है। आज वे स्वदेश वास तो करते हैं, परंतु इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। अतः वहां जो भी हो रहा है उसका दोष परमेश्वर को आप न दें। परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाने की प्रतिज्ञा क्यों करता है? क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, मैं तेरे बीच रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। जी हां, यह एक और बात है जो हमें आज सीखना है। हम सोचते हैं कि हमारे निर्णय ही सर्वोपरि है, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य को लेखा नहीं देता हूं, मैं निदेशक मंडल के अधीन नहीं, मुझे किसी ने चुनाव में नहीं चुना है, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। यदि आपको परमेश्वर का काम सुहाता नहीं तो यह आपके लिए बुरा है, क्योंकि परमेश्वर तो वही करेगा जो वह चाहता है, वह आपका लेखादायी नहीं है। परमेश्वर हमें अपने काम का लेखा नहीं देगा, अतः उसके काम समझना हमारी बुद्धि से परे है। परमेश्वर हमें लेखा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। जी हां, हम उसकी रचना हैं, इसलिए वह हमें लेखा नहीं देगा। हम होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह के समान गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। परमेश्वर इसराइल के पश्चिमी राज्यों को दंड देगा। होशे 11 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, वे मिस्र से चिड़ियों के समान और अशुर के देश से पंडुकी की भांति थरथराते हुए आएंगे और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एप्रेम ने मिथा से और इसराइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। यहूदा में तो फिर भी कुछ अच्छे राजा थे, परंतु इसराइल में एक भी अच्छे राजा नहीं थे। यद्यपि उनके कुछ राजा पाप स्वीकार करते थे, परंतु वह झूठ और छल था। मेरे मित्रों, आज हम मनुष्य को मूर्ख बना सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते थे, आप कुछ लोगों को सदैव मूर्ख बना सकते हैं और सबको कभी कभी तो मूर्ख बना ही देते हैं, परंतु सबको सदैव मूर्ख नहीं बना सकते। जी हाँ, यदि वह टीवी के युग में वास करते तो स्वीकार करते कि सबको सदैव मूर्ख बनाया जा सकता था, परंतु परमेश्वर को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, वह सब कुछ जानता है और सत्य के आधार पर वह न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर जानता है। हम छिप नहीं सकते, चाहे झूठ के बल पर, छल के बल पर, घूस के बल पर, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आइए आज हम अपने जीवन को झांक करके देखें। यदि हमारे जीवन में ऐसे पाप हैं तो हम अपने मनों को फिराएं और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दें, ताकि हम उस आनंद को प्राप्त करें, उस उद्धार को प्राप्त करें जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु 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 यीशु, रिश्ता हमसे जोड़ता है और ना तन्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु 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 मेरा, यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़।